बाह्य में हम अपने आचरण को परिवर्तित करें तो कैसे करें? इन हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि पापों से जो कि संसार बढ़ाने वाले हैं उनसे हम विरक्त हों। भीतर में इन पापों के प्रति विरक्ति का भाव आने पर परिणाम निर्मल होंगे, या ये कहें कि जैसे जैसे परिणाम निर्मल होंगे वैसे वैसे बाह्य में हमारे अंदर पापों से विरक्ति होती चली जाए। ये कसौटी है भैया, हमारे परिणाम निर्मल हैं तो बाह्य में हमें पापों से उदासीनता और विरक्ति आए बिना नहीं रहेगी, और अगर बाहर से हम पापों से विरक्त हो रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि अंतरंग में हमारे परिणाम भी विशुद्ध होना चाहिए, वरना वो जो बाह्य में हमने पापों से विरक्त होने का संकल्प लिया है, उनसे बचने का जो हमने संकल्प लिया है, वो हमारे जीवन को ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा यदि उसके माध्यम से हमारे परिणाम निर्मल नहीं होते। इस पर हम विचार करें, हिंसा हमारे जीवन में कितने रूपों में प्रवेश कर सकती है। हिंसा के बहुत से रूप हैं। हम कई बार वास्तव में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हिंसा करने के लिए हिंसा नहीं करता, वो अपनी किसी आंतरिक लोभ लालसा के वशीभूत होकर के हिंसा करता। हम देखें कि हमारे अपने अंतरंग के परिणामों की कलुषता के द्वारा कैसे हम और हिंसा इत्यादि में प्रवृत्त हो जाते हैं। अहिंसा और हिंसा के बारे में विशेष रूप से अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। हम सब जानते हैं कि जब हम इरादा करके किसी जीव को मारूं इस तरह का विचार या भाव करते हैं तो वो जो इंटेंशनली हमारे मन में दूसरे के पीड़ा पहुंचाने का भाव है, उसके मारने का भाव है, वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। और जो घर गृहस्थी में हम अपना जीवन यापन करने के लिए जो ग्रह के कार्य करते हैं उन सब में भी हमारे द्वारा हिंसा होती है, वो सब आरंभी हिंसा कहलाती है। अपनी आजीविका के लिए धनोपार्जन करते हैं उसमें जो हमारे द्वारा हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा है। अपनी अपने धर्म की और अपने देश की रक्षा के लिए कदाचित हम कभी आत्मरक्षा की दृष्टि से अस्त्र शस्त्र इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं जिससे दूसरे का विघात हो सकता है, तब ऐसी जो हिंसा है वो विरोधी हिंसा कहलाती है। ये सब परिचित है इस चीज से, लेकिन विशेष बात जो जानने की है वो ये है कि कैसे हमारे परिणामों के द्वारा और ये क्रिया जो बाहर में देखने में आती है वो कैसे संपन्न हो जाती हमसे हमारे अपने परिणामों की कलुषता से। क्योंकि परिणामों की निर्मलता जिसके है उसके ये सब क्रियाएं संभव ही नहीं है। अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं परिणामों में कलुषता आई है, इसलिए हमारे द्वारा ये बाह्य में हमारे आचरण में ये चीज देखने में आती है। लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि कभी कभी देखने में ये आता है कि कर्ता कोई और है, और कहते कि एक तो कर्ता है लेकिन भोगते अनेक। बाहर में देखने में तो ये आता है कि एक व्यक्ति कर रहा है लेकिन उसका फल बहुत लोगों को भोगना पड़ता है। क्यों? हमारे अपने परिणामों की वजह से। अपन कभी कभी कोई खेल तमाशा दिखाने वाला आ जाता है तो हुजूम लगा करके खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। तीतर को लड़वाने वाला आता है या बंदर का कोई खेल दिखाने वाला आता है, हम चारों तरफ हुजूम बना के खड़े हो जाते हैं। वो तो आपस में लड़वा करके और हमारा एंटरटेन कर रहा है दो पैसे के लिए, लेकिन हम उस काई में सम्मिलित हो गए। कर रहा है एक, लेकिन भोगना पड़ेगा जितने खड़े हुए हैं उन सब को, क्योंकि उन सब के परिणाम उस क्रिया में कलुषित हुए हैं। यह सावधानी रखना पड़ेगी कि हमने तो सोचा था कि हमने तो हिंसा की नहीं, हमने तो किसी को तमाचा तक नहीं मारा, हमने तो किसी को कुछ किया ही नहीं उसका आयत, लेकिन ऐसे हम सहज भाव से आयत कर लेते हैं। जब कहीं कोई चीज इस तरह की हो रही हो, ये सब निष्क्रिय पाप कहलाता है। सक्रिय हिंसा तो बहुत कम करते हैं, निष्क्रिय प्रकार की हिंसा में हम बहुत शामिल हो जाते हैं। किसी का कुछ भी शुभ अहित हुआ और उसमें हम शामिल हो गए, ये जो सामूहिक पाप है वो हमारे द्वारा निरंतर होता रहता है, क्योंकि हमारे परिणाम उस स्थिति में कलुषित होते हैं। जैसे कि सिनेमा में जाकर के हम कोई दृश्य देख रहे हैं जिसमें कि मार तो एक व्यक्ति रहा है, लेकिन सब उस मारने वाले दृश्य को देख रहे हैं, सब उसमें शामिल हो गए हैं, सब उसके भागीदार बन गए। अच्छा किया, और ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ अब ये ऐसे करेगा तो ये ऐसे मर जाएगा, ऐसा भाव मन के भीतर आ रहा, उसमें सब शामिल हो गए। वो सब जो है अपना मन कलुषित करने से हिंसा के भागीदार हो जाते। करता है एक और उस भागीदार इतने होते हैं, तब इसका फल भी मिलता है सामूहिक पाप के रूप में, तब पूरी की पूरी बस डूब गई, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया। ये क्या चीज है, ये सबके पास सामूहिक पाप का उदय आ गया जो सामूहिक पाप किया था उसका। बात सावधानी की आवश्यकता है कि जब हम अहिंसा के बारे में विचार करें तो अपने द्वारा होने वाली हिंसा से सावधान रहें। हो सकती है इस तरह से भी हिंसा हो सकती है, इतना ही नहीं, कहते करें अनेक और भोगना पड़ता एक को, बड़ी अजीब सी बात लगती है ये, बहुत भावनात्मक है। बाहर से करने वाले अनेक दिखाई पड़ते हैं लेकिन भोगना पड़ता है एक को अधिक मात्रा में। कैसे, सबने की होगी अपनी अपनी शादी विवाह, जिन जिन की हो गई उनकी कह रहे, जो तैयारी में है बेबी विचार कर ले भाई। क्या होता उसमें, अब तो एक दिन में हो जाती, घंटे दो घंटे में, पहले तीन दिन तक जो है दूल्हे राजा बने बैठे रहते थे और कोई काम नहीं करते, दूल्हे राजा बैठे हैं, ये हो गया ये हो गया, पंडाल लग गया है, सब शोभा हो गई है, भोजन वालों के लिए भोजन की व्यवस्था, मेरे मिलने वाले मित्र आएंगे उनके लिए कहां रुकवाओगे, सब प्लानिंग। कितने लोग लगे हैं करने वाले, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, लेकिन उन सब का इंटरटेन कौन कर रहा है, उस सब का आनंद कौन ले रहा है, एक तो सबसे ज्यादा फल किसको मिलेगा उस सब पूरे कार्य का, एक को। ये सावधानी रखना, ऐसे हम बहुत अपने परिणाम कलुषित कर लेते हैं, उन सब क्रियाएं जो हम करने के लिए दूसरे को, जो हमारे लिए हो रही है, उन सब की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर, अगर हम उसको एंजॉय करते हैं तब, ये ध्यान रखना। और वो दूल्हा तो एंजॉय ही करता है कि मेरे लिए हो रहा है ये सब, और आनंद लेता है कि वाह। तो देखिएगा, करता करते अनेक हैं लेकिन भोगता एक है। और मजा देखो, बाहर से किया जाए कमती और फल भोगना पड़े ज्यादा, और बाहर से किया जाए ज्यादा और भोगना पड़े फल कमती, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। सारा भावनात्मक है, इसी वजह से हिंसा और अहिंसा का जो अपने यहां पर गणित है वो बहुत भावनात्मक है। हम लोग तो सिर्फ ये सोच करके कि अरे देख के चलो चींटी पे पांव में पड़ जावे, बहुत अच्छा है, लेकिन भावों में कलुषता कितनी आ गई इसका ध्यान परिणामों में कितनी कलुषता बनी रहती है वो सब हमारे लिए उसका फल भोगना पड़ेगा, वो सब हिंसा ही है। राग द्वेष योर हिंसा, जितने हमारे राग द्वेष से कलुषित परिणाम हैं वो सब हिंसा जनित पाप से हमें लिप्त करने वाले हैं। और जितनी वितरागता और साम्य भाव है वास्तव में वही कर्मों की निर्जरा का उपाय है, अपने जीवन को निर्मल बनाने का वही एकमात्र उपाय। कैसे इसको विचार करें कि करते तो ज्यादा हैं और फल भोगना पड़ता है कमती। सबके जीवन में ये उदाहरण आता है, ध्यान नहीं जाता अपना। अब वैसे ध्यान भी कैसे जावे, पहले तो चूल्हा जलता था घर में रोटी बनने के लिए हैं? तो अपन ने थोड़ो बहुत कहूं चौका में उपद्रव करो या भीतर उनकी वह जो बाउंड्री बनी है उसके भीतर घुसने लगे तो मां क्या कहती थी, सीधे बैठो। अपन नहीं बैठे तो निकाले हम, अब निकाले हम समझ गए सब जने। तो वो निकालती हुई थी, धीरे से उसको बाहर निकालेगी, जलती हुई वो लकड़ी है। अब दिखने में क्या आ रहा है कि ऐसा भाव, अरे क्या कर रहे हैं, लेकिन फल कैसा मिलेगा, फल कमती मिलेगा, क्योंकि परिणामों में वो चीज नहीं है, सिर्फ भय उत्पन्न करने के लिए है, मैं इसे जलाऊं ऐसा भाव नहीं है वहां पर। वहां तो सिर्फ उसको भयभीत करने का भाव है, नहीं तो मां को तो फिर बहुत ज्यादा कर्मों का बंध हो जाएगा, उसको तो कदम कदम पे करना पड़ता। वहां पर परोपकार की भावना है बेटे के प्रति, उसको सुधारने के लिए वो इस तरह, दोष है लेकिन कहते कि बाहर में दिख रहा है ज्यादा, और वैसे अगर कोई लकड़ी जलती हुई किसी को लगाने के लिए ले जावे तो, लेकिन वहां इसमें और इसमें दोनों में क्रिया में एक जैसा हो सकता है लेकिन भावों में बहुत अंतर है। इसलिए कहते कि करे ज्यादा लेकिन भोगना पड़ेगा फल कमती, लेकिन कई बार करते हैं कमती और फल भोगना पड़ता है ज्यादा। ऐसा कठोर वचन कह दिया कि उस कठोर वचन को सुन करके और भीतर मर्म भेदी चोट पहुंच गई और अपने जीवन को ही नष्ट कर सकता है कोई व्यक्ति। आपके यहीं समीप में गुना की घटना है, हाँ नाम नहीं जानता मैं, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन मेरे चतुर्मास में 94 में घटित हुई थी, मेरे चतुर्मास के कुछ ही दिन पहले, 10-15 दिन पहले, याद है दूसरे ही दिन, हाँ और याद आ गया। कैसे कि करे कमती फल भोगना पड़ेगा ज्यादा। एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आर्किटेक्ट में और बहुत अच्छा स्टूडेंट, ब्रिलियंट, बहुत बहुत होशियार, और मालूम पड़ा कि उसने अपना जीवन आत्मघात करके नष्ट कर दिया। हुआ क्या था किसी को नहीं मालूम, इतना बढ़िया परिवार, सारी बातें बहुत अच्छी, सब दुखी हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसने क्या कह दिया, क्या कर दिया। मैं भी खोजबीन में रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, किसी को भी नहीं सूझ रहा कि क्या हो सकता है। 4 महीने व्यतीत हो गए और उनके जो मित्र थे उनसे एक बात मुझे सुनने में आई, कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, किसी को दोष नहीं दे सकते, और समझ में भी नहीं आया कि आखिर कारण क्या हुआ कि उसने अपने जीवन से निराश होकर के और जीवन ही समाप्त कर लिया। बात जरा सी थी, उनके मित्रों ने कहा कि एक दिन वो अपने आत्मघात से पहले ये कहते हुए पाया गया था कि घर में मेरा कोई नहीं है, ऐसा भाव कैसे आया। बात यह थी कि जैसे इंजीनियरिंग करके आया तो उसके पिता ने कहा कि बेटे अब तो तुम स्वयं ही अपने घर का प्लान करो, अपने को किस तरह से घर डिजाइन करना है, नया बनवाना है। और उसने मैप बनाया, डिजाइन किया और बताया पिता को कि ये आपका रूम ऐसा बनेगा, ये बड़े भैया का रूम ऐसा बनेगा और ये गेस्ट रूम इस तरह से बनेगा, ये किचन प्लान किया और ये सब। ड्राइंग रूम प्लान किया, सब कुछ प्लान किया और पिता को दिखा रहा है। पिता बहुत प्रसन्न है, प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना भाई ने, ना माँ ने, ना पिता ने, और वो मैं फोल्ड करके रख दिया गया। बात उसके मन में चुभ गई, जरा सी बात, किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन चूक हो गई। किसी ने ये नहीं पूछा और तुम्हारा कमरा इस घर में, उसने सोचा कि मैं अपने हाथ से, इतना संवेदनशील, ज्ञानवान तो था तो संवेदनशीलता तो बहुत थी, बहुत संतोष था मन में कि मैं अपने हाथ से अपना रूम कैसे ड्राइंग करूं। पिता खुद कहेंगे कि और तुम्हारा रूम, तब फिर मैं अपना डिजाइन करूंगा। इतनी छोटी सी चीज, बताइए आप, वो उसके मन को चुभ गई कि यहां कहने को मेरे माता पिता और भाई सब हैं, लेकिन किसको मेरी चिंता है। किसी ने ये नहीं पूछा इस पूरे घर बनने में कि तुम्हारा कमरा तुम कहां प्लान करोगे, वो तो तुमने किए ही। इतनी छोटी सी बात, जरा सी हमारी भूल, जरा सी हमारी इतनी छोटी सी बात, कितना बड़ा फल मिला उसका ये उदाहरण है मेरे सामने। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ सचमुच हम भी ऐसा ही अपने जीवन में कई बार चूक जाते हैं। सोचते हैं इतनी सी तो बात ही है। एक कहानी पड़ी थी, उसमें था कि बेटे ने बाद में जब पिताजी नहीं रहे तब सबने कहा कि हुआ क्या पिताजी को, बोले किसी ने, हमने तो महीना भर से बोल बोल तक बंद कर दो तुमसे, हमने तो कुछ कही नहीं है, जो उन पर मर जाओगे तो जो जो आपने बोल वो बंद कर दो तो वही उनके मारने में कारण है ना, हमने तो कुछ कही ही नहीं है। कई बार अपन ऐसा कह देते कि हम तो ये बोलने चाले तक नहीं, हमने तो उनसे बोल बोल बंद कर दो, हमने कछु नहीं कही। और हमका हमारी का जिम्मेदारी होगी, जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि आपने जो बोलना बंद कर दिया उससे परिणाम उसके व्यक्ति के, भैया कोई भी यहां पर अपनी उपेक्षा पसंद नहीं करता है, सबसे बड़ी हिंसा है उपेक्षा, दूसरे को उपेक्षित कर देना उसके जीवन को मानो नष्ट करने जैसा ही है। तो दिखता तो थोड़ा सा है लेकिन फल मिलेगा बहुत ज्यादा। हिंसा के इतने रूप हैं, दिखाई नहीं पड़ती ऐसी प्रकट में, कौन कौन को मारता आज कोई नहीं, लेकिन भीतर के परिणामों की कड़वता से हम निरंतर जो है हिंसा के भाव से लिप्त बने रहते हैं और अपने जीवन को और पतन की तरफ ले जाते। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कह रहे कि करे समान लेकिन भोगे फल अलग अलग, ये तो बहुत स्पष्ट सा ही है कि सब लोग को मालूम है कि एक जैसा कार्य करते हैं लेकिन फल अलग अलग भोगना पड़ता है। लोग पूजा करने 100 लोग खड़े हुए हैं, वे 100 लोग सब एक जैसे भाव से पूजा नहीं कर रहे हैं, सबके अलग अलग भाव हैं, सबको अलग अलग फल मिलेगा। ठीक इसी तरह से जैसे कि शुभ फल है वैसे ही अशुभ है। एक माँ भोजन बना रही है, क्या विचार कर रही कि इसको बनाने से सबका अच्छा होगा, सब इस भोजन को करके और अपना धर्म ध्यान करेंगे, एक भाव ये है। और दूसरी माँ भी भोजन बना रही, वही क्रिया कर रही लेकिन ये सोच करके कि हमारे मत्थे जैसा भाई है, जिंदगी यही में निकल जाए हमारी, कौन कौन को कवे कवे तक बना बना के खुआत रहे, हमारा का भाव कछु तो नहीं जीवन में, तो पढ़ो लिखो का काम में आओ, हमारे सब बेकार है। एक ये भाव, जैसा भाव होगा कर्म एक सा दिखाई पड़ता है लेकिन जैसा भाव होगा वैसा फल मिलेगा। इतना ही नहीं, करे बाद में फल पहले भोगना पड़ेगा, आश्चर्य लगेगा, करे बाद में फल पहले भोगना पड़ेगा। बहुत सीधी सी चीज है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति का बुरा करने का प्लान करते रहते हैं और बुरा नहीं कर पाते। देखो वर्षों लग गए कि किसी व्यक्ति का मैं ऐसे ऐसे करके और उसका आयत करूंगा, और वर्षों प्लान करते रहे और उस प्लानिंग करने में अशुभ परिणामों से और कर्म बंधते रहे, और इससे पहले कि उसका आयत कर पाए स्वयं का जीवन पूरा हो गया और वे जो कर्म बंधे हैं उनका फल मिलना शुरू हो गया, उस व्यक्ति का कोई बिगाड़ ही नहीं कर पाया, उसके पहले मरण को प्राप्त होकर के और दूसरे जीवन में जाकर उन कर्मों का उदय भोगते हुए और तकलीफ उठाने लगे, दूसरे को दुख देने का विचार उसे दुख बाद में पहुंचा पाएगा, स्वयं हमारे जीवन को नष्ट पहले करे। इसलिए कहते कि करे बाद में फल भोगे पहले, देने का जो विचार किया है उससे दुख तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर हमारे अपने जीवन में उसका फल तो हमें हो सकता है कि उसको दुख बाद में पहुंचे, हमें पहले उसका फल मिल जाए और फल भोगना पड़े। और आखिरी बात आपसे कहूं, कहते हैं कि करे कोई और भोगे। अभी तक तो कर्म सिद्धांत में यही अपन ने सुना था कि जो करे सो वही भोगेगा। भैया इतने नहीं है, ऐसा तो है ही, लेकिन इससे भी एक कदम आगे है कि करे कोई और भोगे कोई। सो सबके जीवन में उदाहरण देखने में आता है कि परिवार में एक व्यक्ति खोटी आदत वाला होवे तो बाकी सबकी आंख नीची हो जाती, बाहर निकलने में हो जाती कि नहीं, बोलो। घर का एक बेटा और व्यसन करे तो बाकी सबको उसका फल भोगना पड़ता कि नहीं, करे कोई और भोगे कोई, आंख नीची हो जाती। भला फल भी ऐसे ही है, एक बुरे फल की बात है। भला फल एक बच्चे को जो है और परिवार में और अच्छे नंबर आने से अवार्ड मिल जाता है तो बाकी सब भी क्या कहलाते हैं, ये वो उस बेटे के माता पिता है, उसको इतने इतने नंबर मिलेंगे, अवार्ड मिला था इसको, प्रशंसा भी मिल रही है। करता कोई है और भोगता कोई और है, ये इसका उदाहरण मेरे जीवन में। और बाकी तो ये उदाहरण है, लेकिन जो एक बड़ा अजीब सा उदाहरण आया वो आपसे कहूं और बात पूरी करूं। समय तो अपना हो गया, ये नहीं कहूंगा ज्यादा हो गया, समय तो अपना हो गया था। उसी समय जब हमारे पास माइक आया था 5 मिनट बचे थे, 9:30 तो जो ही बज गए थे, ये तो हमने बोनस के ले लिया, चुका हमने पढ़ने चुका दे हैं भाई, कौन कौन 5-5 मिनट कम करके। तो ग्वालियर की घटना है, ऐसी घटनाएं अगर अपन थोड़ा सा अपने आसपास दृष्टि डालें तो बहुत घटित होती हैं, जो अपने जीवन को प्रेरणा दे सकती हैं कि बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना। भैया सावधानी बाहर की अकेली नहीं, बाहर फूंक फूंक के कदम रखने वाला भी अंतरंग के परिणाम में संभालेगा तो उसके फूंक फूंक के कदम रखने का कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। फूंक फूंक के कदम रखने का मतलब ये है कि भैया भीतर के परिणाम संभाले रहना और कुछ नहीं। कई लोगों को लगता होगा कि महाराज को का है, महाराज को तो फुर्सत है दिन भर का करने, भैया से 24 घंटे कछु नहीं करने, हमारे जिम्मे कोनो काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा काम है कि अपने परिणाम संभाले रहियो 24 घंटा, जो ही काम है और कछु काम नहीं। अगर देखा जाए तो एक ही काम है 24 घंटे का काम, कि जरा हमें जो है परिणाम और बिगड़ सकते हैं, वातावरण जो है चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है। वो घटना आपको मैं सुनाऊं, मुझे किसी पत्रकार ने सुनाई थी, और वो जैन नहीं थे, वो लेकिन प्रवचन सुनते होंगे। तो एक दिन आकर बोले मेरे से कि आपके लिए मैं एक बात सुनाऊं, बड़ी अजीब सी बात है, आज मेरे पास मेरे पत्र में छपने के लिए, पेपर में छापने के लिए एक घटना आई है, संवाददाता ने मुझे वो दी है, मैंने उसकी इंक्वायरी भी कर ली है, तब छापूंगा क्योंकि घटना बड़ी अजीब है। क्या हुआ भाई? कहते महाराज जो आप कहते हैं वैसा ही है, संसार की वास्तविकता हमने देख ली, आप तो अपने प्रवचन में कहते ही हो, हमने तो अपनी आंखों से देख ली। भाई हमने कहा सुनाओ तो बात क्या? कहते उसी को बताने तो आपके पास आया हूं कि एक परिवार में माता और पिता में आपस में और विवाद हो गया, और वो विवाद बढ़ता चला गया। घर में एक बेटी है, माँ है और पिता है, 3 प्राणी है कुल, और विवाद इतना बड़ा कि पिता ने अपनी बेटी और जीवन साथी को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। होता है, इतना तो होता है कि नहीं? इतना तो अनुभव आपको होगा, इसमें क्या बात है? नहीं हम लोग क्या कहें, आप बुरा नहीं मानना, आप ये तो अपने देखने में आया, अपने अनुभव में आता मतलब अपने देखने में आया, सब चीजें अपने अनुभव में आवे इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन में घटित हुई, अपने जीवन में देखने में आती तो अपन कहते हमारे अनुभव में आई। अब इसके बाद की जो चीज है कि ठीक है उन दोनों को, उस बेटी को और माँ को घर से बाहर निकाल दिया है, वे अपने नाना के यहाँ जाना चाहती तो जा सकती थी, नहीं गई, बहुत स्थिति, सोचा कि जब यहीं से दुचकार दिया तो कहाँ जाए, तो उसी मोहल्ले में और 10-20 घर आगे पीछे जाकर के और किसी के यहाँ किराए से रहने लगी कि थोड़ा शांति हो जाएगी, कोई भी हो वे कषाय कितनी चलेगी, जब परिणाम शांत होंगे सो अपने आप आ जाए, कहीं रहो पास नहीं, ऐसा सोच के वो रह गए। लेकिन इस व्यक्ति की कषाय देखो, इतनी अधिक कषाय कि उनके यहाँ पर नल की लाइन कटवा देता, कभी कभी बिजली की लाइन कटवा देता, कहते महाराज यहाँ तक तो ठीक है, सुनाने वाला कहता लेकिन आज तो अति हो गई, अपनी ही बेटी और अपनी ही जीवन साथी पर चारित्रिक रूप से हमला करने के लिए उस व्यक्ति ने गुंडे भेजे हैं। ये संसार की वास्तविकता जो है आज देखने में आई कि यहां तक कोई व्यक्ति पतित हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि ये तो घटना हो गई, सारा मिलेगा किसको, शेय किसको जाएगा, करे कोई और भरेगा कौन, वो जिसने की ये करवाया है, जिसने उसे भेजा है पैसे देकर के कि तुम इनके जीवन को बर्बाद करो, मार दो, ऐसा नहीं इनके जीवन को बर्बाद कर दो, इसके लिए भेजा है और 1,000-5,000 रुपए देकर के भेजा है, कर रहा है कोई और भोगेगा कोई, कौन जिसने करवाया है वो भोगेगा। हम अपने जीवन में झांक के देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इस तरह बाहर से कुछ करते नहीं दिखाई पड़ते हो लेकिन हमारे परिणामों में
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंताहि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के, हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार एक ही बात पर विचार कर रहे हैं कि अपने जीवन को रोज रोज कैसे और बेहतर ढंग से जिया जाए जिससे कि यह मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो सके। मनुष्य जीवन की सार्थकता केवल ज्ञान की प्राप्ति में है। केवल ज्ञान भी बहुत जीवों को प्राप्त हो जाता है लेकिन ऐसे विरले ही जीव होते हैं जो तीर्थंकर पद को पाकर अपना कल्याण करते हैं और जिनके माध्यम से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। भावनाएं हमारे जीवन को कितना ऊंचा उठा सकती हैं यह विचार करने की चीज है। सद्भावनाएं हमारे जीवन को ऊंचा उठाती हैं लेकिन दुर्भावनाएं अगर हमारे जीवन को घेर लें तो वे हमें पतन की तरफ भी ले जाती हैं। आचार्य भगवंतों ने संसार शरीर और भोगों के स्वभाव को दर्शाने वाली 12 भावनाओं के चिंतन की सलाह दी। संसार शरीर भोगों से विरक्त होने के लिए वैराग भावना भानी चाहिए, ऐसा कहा। 5 महाव्रतों को किस तरह से सुदृढ़ और सुस्थिर रखा जा सके जीवन भर, इसके लिए उमा स्वामी आचार्य महाराज ने एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाएं कहीं। मेरी भावना सर्वविदित और सुप्रसिद्ध है। ऐसे ही कोई भावनाओं के माध्यम से अपने और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए तीर्थंकर पद भी पा सकता है। उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करने में कारण जो बनती हैं वे 16 भावनाएं हैं, और इसीलिए उन्हें 16 कारण भावना कहते हैं, क्योंकि वे तीर्थंकर के बनने में, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय में कारण बनती हैं। लेकिन अकेले भावना के बहाने से काम नहीं होगा, भावना के साथ विशुद्धि होना जरूरी है। बेभावनाएं हमारे मन में, हमारे जीवन में विशुद्धि तो लाती ही हैं, लेकिन उन भावनाओं को भाते समय भी अत्यंत विशुद्धि की आवश्यकता है। यहां मालूम पड़ता है कि उपादान की योग्यता के साथ साथ प्रबल निमित्त भी आवश्यक है। मात्र उपादान से कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान और निमित्त की संयुति से ही होता है। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता, और निमित्त में कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान में ही होता है। वर्तमान में बहुत चर्चा चलती है, लेकिन वस्तु स्वरूप अकेले चर्चा से स्पष्ट नहीं होता। वस्तु स्वरूप तो अपने उपादान को जागृत करके जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का निमित्त है उसे जुटाने पर ही प्राप्त होता है। निमित्त अपने आप मिल जाते हैं, इतना ही नहीं समझना चाहिए, निमित्त जुटाना भी पड़ते हैं। हम सबके पूर्व संचित पुण्य का उदय तो है ही हमारे साथ, लेकिन सच्चे देव का निमित्त मिलने पर ही हमारे उस पुण्य की अभिव्यक्ति हमारे आत्म कल्याण के कार्यों में होगी। हम चाहें तो उसी पुण्य के फल से अपने संसार बढ़ाने के कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। एक ही साता वेदनी के उदय में व्यक्ति के विवाह इत्यादि कार्य होते हैं, और उसी साता वेदनी के उदय में हाथ में पीछी कमंडल भी आता है। ये हमारे अपने पुरुषार्थ और बाह्य निमित्त पर निर्भर करता है। आज थोड़ी सी चर्चा इस तरह की करने का मन हो गया। एक ही साता वेदनी कर्म का उदय अगर हम चाहें तो उस साता वेदनी कर्म को ऐसे भुना सकते हैं कि अपना विवाह करके संसार में गृहस्थ जीवन जिएं, और उसी साता वेदनी के उदय में हम अपना पुरुषार्थ जागृत करके श्री गुरु का निमित्त पा करके और अपने आप को कल्याण के मार्ग पर महाव्रतों को अंगीकार करके अग्रसर कर सकते हैं। 16 कारण भावनाएं हम और आप सब भा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने में कारण बनने वाली ये 16 कारण भावनाएं बिना केवली शुद्ध केवली के पाद मूल के तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में कारण नहीं बन सकते। चाहिए प्रबल निमित्त, चाहिए आपके उपादान में योग्यता है सो ठीक है, लेकिन जब तक केवली शुद्ध केवली का पादमूल उनके श्री चरणों में बैठने का मन और उनके श्री चरणों में बैठ करके हम अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ये 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय की कारण नहीं बनेंगे। जबकि ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय में कारण बनती हैं केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, और एकमात्र मनुष्य पर्याय में ही इनकी प्रतिष्ठापना होती है। बंद तो और भी पर्यायों में हो सकता है आश्रय, लेकिन प्रारंभ तो मनुष्य पर्याय में ही होता है और केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होता है। कितने निमित्त चाहिए मनुष्य पर्याय मिले बिना उपादान में, कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, लेकिन कारी नहीं होगा। बाह्ये तरोपादि समग्र तेयम कार्येषु ते द्रवगत स्वभाव नैवान्य था मोक्ष विदिन पुंसाम तेनाभिनंदस तुम ऋषिर्बुधाना। हे वासुपूज्य भगवान, आपके जिन शासन में ये बात बहुत ठीक कही गई है कि बिना वाही और अंतरंग कारण के मिले कोई कार्य नहीं होता, सिर्फ अंतरंग कारण से ही कार्य होता हो ऐसा नहीं है, और सिर्फ बाह्य कारण से ही कार्य होता हो ऐसा भी नहीं है, अंतरंग और बाह्य कारण दोनों के मिलने पर कार्य होता है। सो अंतरंग में तो दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं और बाह्य में केवली शुद्ध केवली का पाद मूल और मनुष्य की पर्याय, ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर के हम अपने उत्थान के लिए और प्रयत्न कर पाते हैं, भावनाएं तब फलीभूत होती हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता सील व्रतेश्वनिति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करण अरहद आचार्य उपाध्याय या अरहद मरहदाचरण भूल गया। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्णति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृतकरण मरदाचारी बहुशत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर्मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। थोड़ा सा भी होशियारी आई तो गया, थोड़ी होशियारी आ गई थी कि मेरे से बन रहा है। विनय के साथ ही बनेगा, बिना उसके नहीं बनेगा, ये मैंने बहुत बार अनुभव कर लिया और आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। ज्ञान के लिए विशुद्धि चाहिए, ज्ञान के लिए अभ्यास अभ्यास नहीं चाहिए, श्री गुरु की कृपा चाहिए। उपादान में क्षमता बिना निमित्त के नहीं आती, ये कहना चाह रहा हूं। यही सामने के सामने उदाहरण है। तो ये 16 कारण भावनाओं में पहली भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में क्या अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, पर अंतर अवश्य। सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है। अरे भाई, सम्यक दर्शन तो स्वयं आत्मा की निर्मलता का नाम है, फिर अब सम्यक दर्शन की और निर्मलता क्या? कहते 25 दोषों से रहित जो सम्यक दर्शन है वही निर्मल सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन में निर्मलता कैसे आती है? कहते कषायों की मंदता से आती है। और कषायों की मंदता कैसे होती? कहते व्रत नियम संयम और तत्व के अभ्यास से होती है। अभी तक तो हमने यही सुना था कि सम्यक दर्शन हो जाने पर सब काम हो जाता है, आज तो आप कुछ और भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं भाषा तो वही बोल रहा हूं जो आचार्य भगवंतों ने लिखी है, हमारे समझने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। सम्यक दर्शन के होने पर उसकी निर्मलता कषायों की मंदता से होती और उसके लिए व्रत नियम और तत्व का अभ्यास अनिवार्य है। जो निरंतर व्रत नियम और तत्व का अभ्यास करता उसके सम्यक दर्शन में निर्मलता आती चली जाती है। ये प्ररूपण अब बहुत कम जगहों पर होता है, कोई नहीं करता। सम्यक दर्शन जो चौथे गुण स्थान में, वो ही सीधा केवली भगवान के समय भी। क्यों? दर्शन मोहनी कर्म के छह छह उपसम उपसम की अवस्था है, चारित्र मोहनी का उसमें कोई काम नहीं। ऐसे ही होता ना प्ररूपण भैया जी, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी एक ही आत्मा के भीतर हैं। अपनी जगह झाड़ पहुंच के सारे कमरे में कचरे में बैठे रहो तो वो अनुभूति नहीं होगी जो साफ सुथरे कमरे में बैठने पर होगी। इतना तो समझ में आता है, जितनी जगह में बैठे उतनी साफ सुथरी, बाकी सब में गंदगी फैली, उसका असर होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। और पूरा कमरा साफ है और उसमें बैठे हैं, जहां मुंह का सर्वथा अभाव हो जाए वहां विशुद्धि अलग होगी, और जहां मात्र मुंह की दर्शन मोहनी मात्र गई है वहां पर विशुद्धि कितनी होगी? कुछ तो फर्क होगा कि एक ही जैसा है क्वालिटी नहीं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के चेंजेस हैं वहां पर, दोनों में कमी है, ना क्वालिटी है वो ना क्वांटिटी है वो। लेकिन ठीक है, अपना अपना समझने का ढंग है, कैसे भी समझ में आवे अपन को। मुख्य बात यह है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके जो दृष्टि हमने पाई है उतने में ही संतुष्ट नहीं हो जाना है, मुझे उसकी निर्मलता के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है। इतना तो अपने को आसानी से समझ में आता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके एक दृष्टि मिलती है, ठीक वैसा ही अंतर है सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में जैसा देखने और दर्शन में फर्क है। देखने और दर्शन में क्या फर्क है? चलो देख के आते हैं हवा महल, चलो देख के आते हैं जंतर मंतर, या चलो देख के आते हैं कुतुब मीनार, चलो देख के आते हैं संसद भवन, और चलो दर्शन करके आते हैं मंदिर के। ऐसे ही ना कहा जाता, या ये कहा जाता है कि चलो दर्शन करके आते कुतुब मीनार के और देख के आते हैं मंदिर, नहीं कहता कोई, नहीं कहता। क्यों? फर्क है देखने और दर्शन करने में। देखना होता है इन चर्म चक्षुओं से और दर्शन होता है हृदय की आंख से, श्रद्धा की आंख से। इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं होता, इन चर्म चक्षुओं से तो दिखाई पड़ता है। ठीक ऐसे ही सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में फर्क है। सम्यक दर्शन के होने पर तत्व चिंतन हमेशा नहीं चल सकता, सम्यक दर्शन के होने पर तो तत्व चिंतन के साथ साथ पंचेंद्री के विषयों का चिंतन भी चलता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि जो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में कोई बिरला जीव भाता है, तब उस समय पंचेंद्री के विषयों का चिंतन नहीं होता, एकमात्र तत्व चिंतन होता है। यही सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में निर्मलता का फर्क है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। दृष्टि इतनी निर्मल हो जाती, दृष्टि मिल जाना और फिर दृष्टि पर से निर्मलता आते चले जाना, दोनों बिल्कुल चश्मे उतार के रखना पड़ते हैं। अभी तो आंख ठीक होने पर भी शौक के लिए चश्मा लगा लेते हैं लोग, नहीं लगाते। ऐसे ही दृष्टि निर्मल होने के बाद भी तरह तरह के चश्मे लगाए जा सकते हैं, पर सब चश्मे उतार के रखना पड़ेंगे। कौन से नए के पक्षपात के चश्मे भी निकाल के रखना पड़ेंगे। जरा अब बहुत दिन हो गए, अब तो ये चीजें मैं थोड़ा थोड़ा करके सोच रहा हूं कि सैद्धांतिक चीजें भी नहीं तो कभी नहीं आएंगी, फिर बीच बीच में जो है जरा सा सिद्धांत भी समझते चले जाएं। वैसे तो सहसा समझ में नहीं आता, पर फिर भी नए के पक्षपात से भी रहित होना पड़ेगा। क्यों? हम तो ये जानने की पद्धतियां हैं, उनसे जान करके उन पद्धतियों को एक तरफ जब रख देंगे तब वस्तु स्वरूप ठीक ठीक दिखाई पड़ेगा। इसलिए लिखना पड़ा कि दृष्टि मिल जाने के बाद भी नए का पक्षपात भी ना हो, वो चश्मा भी उतार के रख देना, तब जाकर के जो अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति है वो होगी, तब विशुद्धि बढ़ेगी और वह दर्शन विशुद्धि जाकर के फिर आश्रम में कारण बनेगी, तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम। सारा संसार कहता है कि आश्रम और बंध तो संसार का कारण है। देखो किसी भी जगह आप किसी भी आचार्य भगवंत के चरणों में बैठ करके पूछ लो कि आश्रय और बंध संसार के कारण है, तो एक स्वर में कहेंगे कि आश्रय और बंध संसार के कारण है। और वहीं पर अगर किसी आचार्य भगवंत के चरणों में बैठ के पूछो कि तीर्थंकर नाम कर्म, तो कहते तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय भी अपने और प्राणी मात्र के कल्याण में कारण है। कहां एक तरफ कह रहे हैं कि आश्रय और बंध संसार के कारण है, वहां दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तीर्थ एकमात्र तीर्थंकर नाम कर्म है जिसका आश्रय भी अपने और प्राणी मात्र के कल्याण में कारण। ये विशेषता है उस दर्शन विशुद्धि की। दृष्टि पर से सारे आवरण हट गए हैं, अत्यंत निर्मल हो गई है दृष्टि। अजमेर की घटना है आचार्य महाराज के साथ में, वो सुनाते हैं कि ऐसा हुआ, कुछ लोग आए। आज भी ऐसे लोग हैं कहने वाले, महाराज आपका आचरण बहुत उत्कृष्ट है, आपकी तपस्या बहुत उत्तम है, आपकी सब बातें, आपका ज्ञान सब बहुत अच्छा है, पर एक बात कहनी है महाराज। आचार्य जी ने कहा, कहो महाराज। आप सब लोगों के बीच में विचरण करते हैं, आप अगर एक लंगोट धारण कर लेवें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सबके बीच में रहना पड़ता। आप तो वीतरागी हैं, लेकिन हम लोगों की दृष्टि तो राग की है, इसलिए कहा मैंने महाराज आप बुरा नहीं मानना। इतनी सब बातें कह दी महाराज से। आचार्य महाराज तो हमेशा से, और जवाब देते हैं तो बड़े विनोद के भाव से देते हैं, बड़े हंस करके जवाब देते हैं। तो बोले कि हाँ भाई आपकी बात तो ठीक है, विचार करने योग्य है। तो उनको बड़ा साहस मिला, भी और खिसक के आए थोड़े पास में, कि महाराज ने लगता है बात मान ली। आचार्य महाराज बोले कि आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे धर्म में अपरिग्रह को बहुत महत्व दिया है। कहते हाँ महाराज, अपरिग्रह को तो महत्व दिया ही है, तो ऐसा अपन कर ले में इसका उपाय उपाय ही तो करना है। आपके भीतर राग ना जागृत हो, मेरे भीतर तो आप कह रहे हैं कि वीतरागता है ही, तो एक बहुत आसान सा उपाय है, दो छोटी छोटी सी पट्टियां बनवा ली जाएं। अब उनके समझ में नहीं आया, लंगोट में तो कपड़ा जरा ज्यादा लगेगा, छोटी छोटी सी पट्टियों में तो कम लगेगा। हाँ महाराज कम तो लगेगा, तो पट्टियों का क्या करेंगे। बोले कुछ नहीं, उनको यहां पर बांध लेना, जब मैं निकलने लगूं तो गिरा लेना। आ गया समझ में। आप अपनी आंख संभाल लो, अपनी दृष्टि संभाल लो, संसार में हम सब कुछ संभाल लें और हमारी आंख ना संभले, हमारी दृष्टि निर्मल ना हो, तो ये संसार कैसा दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे सारा सुख इसी में है, और दृष्टि निर्मल हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि सुख संसार में नहीं है, सुख तो मेरी अपनी आत्मा में ही है। यह जो सुख मेरी आत्मा में है वह आत्म सुख, यह दृष्टि की निर्मलता है। अभी अभी तो दृष्टि की निर्मलता होने के बाद भी पंचेंद्रिय और मन के विषयों में सुख मालूम पड़ता है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जब तक वह सराग अवस्था है तब तक पंचेंद्री के विषयों में भी सुख मालूम पड़ेगा, तभी तो उन्हीं के लिए प्रयत्न करेंगे सुबह से शाम तक। नहीं करते हैं? करते तो हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद भी करते हैं। विशुद्धि तब आएगी जब इन पंचेंद्री और मन के विषयों से विरक्त होंगे। दर्शन विशुद्धि भावना ऐसी ही है जिसमें कि पंचेंद्रिय और मन के विषयों से विरक्त हो गए, उनका चिंतन भी नहीं है, एकमात्र आत्मा का चिंतन है, आत्मा के उस अनंत सुख का वहां रसास्वादन है। जबकि अविरत सम्यक दृष्टि है जो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में बैठा हुआ है, एकमात्र तत्व चिंतन कर रहा। और दूसरी चीज, उस तत्व चिंतन के साथ साथ क्या भावना जरूरी है, स्वपर कल्याण की भावना जरूरी है। मुमुक्षु तीन प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना, मैंने शायद पहले भी कभी कहा हो ना भी कहा हो। एक वे हैं जो कि अपने ही आत्म कल्याण में लीन रहते हैं, वे भी मुमुक्षु हैं। एक वे हैं जो अपने साथ साथ दूसरे के कल्याण में भी तत्पर रहते हैं, और तीसरे वे हैं जो
पर के कल्याण में ही तत्पर रहते हैं। तीनों मुमुक्षु हैं, मोक्तुम इक्षु मुमुक्षु, जिसको मुक्त होने की संसार से इच्छा जागृत हो गई है वो सब मुमुक्षु हैं। पहले मुमुक्षु भगवान ऋषभदेव थे, ऐसा मोक्ष के तरफ बढ़ने का, संसार से मुक्त होने का भाव रखने वाला मुमुक्षु, स्वपर कल्याण की भावना जब भाएगा, मेरे आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होगा, बाकी सबको नहीं होने वाला। विरले ही कोई 24 जीव होंगे भरत और ऐरावत में और 160 होंगे पूरे विदेह क्षेत्रों में, कुल 170 ही जीव होंगे जो कि इस पद को प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना की है, जिनके मन में प्राणी मात्र के प्रति ऐसा करुणा का भाव है, मैत्री का भाव है। वास्तव में होता क्या है, मैं विचार कर रहा था कि पर के कल्याण की चिंता करना, यह तो वैसे आचार्यों ने इसको बहुत शाबाशी नहीं दी है, फिर यहां पर क्या भाव है उसका, जरा गौर से देखें तो दर्शन विशुद्धि के साथ में एक विशेषता जुड़ी हुई है कि एक बार उस आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया, अब जैसे ही अपने भीतर उस आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ तो वैसी ही आत्मा सबकी है, उसके भीतर भी उस आत्म स्वरूप का दर्शन होने लगे, और जब सबके भीतर आत्म स्वरूप का दर्शन हो गया तब फिर सबके आत्मा के कल्याण की भावना आए बिना नहीं रहेगी। पर की चिंता नहीं है, पर के कल्याण की चिंता है, इतना फर्क है। अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण हो, सब अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकें जिसे कि मैं प्राप्त करना चाह रहा हूं, वो चीज एक अकेले मेरे पास क्यों रहे, सबके पास क्यों ना हो जावे, ऐसा विचार, ऐसी निर्मलता जिसके भीतर आती है उसके ही ये दर्शन विशुद्धि पहली भावना होती है। 16 कारण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि प्रमुख भावना है, इसके अलावा 15 ना भी हो तब भी एकमात्र दर्शन विशुद्धि से ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है, होता ही है। और अगर विनय संपन्नता नंबर दूसरे नंबर की भावना है तो उसके साथ भी दर्शन विशुद्धि होना अनिवार्य है, चाहे कोई भी 15 भावना में से भावना हो उसके साथ दर्शन विशुद्धि तो अनिवार्य है। एकमात्र दर्शन विशुद्धि ही पर्याप्त है या अन्य कोई भी भावना हो तो उसके साथ दर्शन विशुद्धि जुड़ी हो, यानी मेरे आत्म कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना तो 16 कारण भावनाओं में प्रमुख भावना है, वो हरेक के साथ जुड़ी होनी चाहिए, तब जाकर के ये दृष्टि ऐसी प्राप्त होती है। प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक, ये चारों गुण अभिव्यक्त होने लगते हैं, ये उसके बाद की स्थिति है। जैसे ही 25 दोषों से रहित अवस्था प्राप्त होती है और भीतर प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक ये भाव उत्पन्न होना शुरू होते हैं। अपन जरा सा इस पर विचार कर लें, आसानी से समझ में आने वाली चीजें हैं। कषायों की मंदता का नाम प्रशम है और ज्यादा कठिन नहीं है, और कषायों की मंदता आती है व्रत नियम के द्वारा, इसलिए व्रत नियम के प्रति सम्मान का भाव, भले ही ना ले पाए, क्या एक भी व्रत नियम नहीं लिया हो फिर भी व्रत नियम के प्रति अत्यंत सम्मान की भाव, त्यागी व्रति के प्रति भी अत्यंत संभावना, अत्यंत सम्मान कि वाह आपने यह त्याग ग्रहण किया, आपने ये व्रत ग्रहण किया, क्योंकि वह व्रत और त्याग तो भगवान के द्वारा कहा हुआ ही है, इसलिए मैं आपके त्याग और व्रत का सम्मान करके इनडायरेक्ट भगवान की वाणी का सम्मान कर रहा हूं। वहां दृष्टि की इतनी निर्मलता है, वहां ये नहीं ध्यान जाता है कि अरे इसका सम्मान कर दिया, नहीं, यह तो व्रत का सम्मान भगवान की वाणी का, क्योंकि भगवान की वाणी में से ही वो व्रत आए थे और भगवान ने उन व्रतों का स्वयं पालन किया था, इसलिए भगवान का और उनकी वाणी का दोनों का सम्मान। तो कषाय की मंदता के लिए प्रशम भाव धारण होने पर व्रत नियम के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव आएगा, एक छटपटाहट भीतर मचेगी कि मैं कब व्रत नियम ले लूं, भले ही ना ले पाए,
ऐसा अपने भीतर है क्या प्रशम भाव? आना चाहिए भैया, अब बहुत समय हो गया। अब अपने मन में एक लालसा जागनी चाहिए कि क्या करूं दिन भर में, कैसे करूं कि थोड़ा तो मेरे जीवन में भी एक दिन के लिए ही सही, एक घंटे के लिए ही सही, मेरे जीवन में त्याग थोड़ा सा घटित हो, मेरा जीवन अनुशासित हो, व्रतों से युक्त हो। ये प्रशम भाव, कषाय की तीव्रता में ये भाव नहीं आएगा, कषाय की मंदता में ही ऐसा निर्मल भाव आएगा। और संवेग, दिन भर में बार बार ये संसार, यहां कर्मों का बंधन, उससे मिलने वाला सुख दुख निस्सार है सब। मुझे जल्दी से इस संसार से पार हो जाना है। बार बार ये भावना दिन भर चल रही है कि मुझे इस संसार में रचना पचना नहीं है, मुझे तो इस संसार से पार होना। ये संवेग है, या कि धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग होने का नाम संवेग है। जहां भी धर्म की चर्चा होती है, जहां कोई धर्म को धारण करने वाला दिख जाता है, वहां हृदय गदगद हो जावे, शरीर रोमांचित हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ा, ऐसा भाव हमारे भीतर आता है, वो संवेग है। और अनुकंपा, किसी भी जीव को अपना अकल्याण करते देख करके, या कि अपने कर्मों का फल भोगते देख करके, विपत्ति और दुख में देख करके मन का कांप जाना। अभी तो विपत्ति और दुख में देख करके थोड़ा मन कांपता है, पतन के रास्ते पर जाते देख करके भी कांपना चाहिए कि अरे देखो, यह आत्मा जिसके भीतर और मुक्ति पाने की सामर्थ्य छिपी हुई है, और ये कैसे पतन के रास्ते पर जा रहे हैं। मन कप जाता है। ये अनुकंपा है जिसमें कि उसके कल्याण के लिए, और हम चिंतित हो जाएंगे कि कैसे क्या उपाय करूं जिससे कि यह आत्मा भी मोक्ष के मार्ग पर लग करके और अपना कल्याण कर लेवे, ऐसा भाव दर्शन विशुद्धि के होने पर ही आ सकता है। भावना अपन भाते हैं 16 कारण परवाने पर, लेकिन उसमें और थोड़ी सी अपन विशुद्धि लाएं, ऐसी भावना अपनी हमेशा बनी रहे। जब भी कोई व्रत नियम से विमुख होता दिखाई पड़े, या व्रत नियम के प्रति उसका श्रद्धान ना होवे, या कि वो अपने हाथ से ही अपने पतन के मार्ग पर जा रहा हो, तो मन में भाव आ जावे कि कैसे क्या करूं जिससे कि भले ही कुछ ना कर पाए, लेकिन मन में भाव आ जावे कि क्या कुछ ऐसा हो इसके पुण्य का उदय आ जावे, या ऐसे ऐसा प्रबल निमित्त मिल जावे जिसके माध्यम से ये भी अपने आत्मा का कल्याण कर लेवे, और मैं कभी भी ऐसे मार्ग पर ना चलूं, मैं कभी भी ऐसे इसके समान भटक ना जाऊं, मैं भी कभी कर्म के उदय में अपना पतन ना कर बैठूं, ऐसी सावधानी, ये सारी चीजें। और आस्तिक तो है ही, अपने ऊपर विश्वास, अपने आत्मस्वरूप पर श्रद्धान, और जिन्होंने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया है उन पर श्रद्धान। ये प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक, ये चारों चीजें जब हमारे भीतर प्रकट होने लगती हैं, तब कितनी विशुद्धि बढ़ेगी। आप अनुभव करके स्वयं देखें, इन चारों चीजों का अपन तो सिर्फ प्ररूपण सुन रहे हैं, कर रहे हैं, और ये चारों ही चीजें जब हमारे जीवन में आएंगी, तो कैसा, कितना निर्मल हमारा जीवन होगा, कैसी हमारी दृष्टि हो जाएगी, फिर कहां किसके दोष दिखाई पड़ेंगे, फिर तो दिख भी जाएंगे तो लगेगा कि अरे ये कब अपने दोषों को हटा करके, या अपने स्वयं भी दोष देख करके लगेगा कि कब अपने इन दोषों को हटा करके मैं कब अपनी उस निर्मलता को प्राप्त कर लूं, और कैसे प्राणी मात्र भी कल्याण कर ले अपना। बार बार ये बात मन में बनी रहेगी, कैसे अपना आत्म कल्याण करूं और कैसे सब जीव अपना